சரண்யம் பிரஜாம. அப் சப்கோ நமஸ்தே. வைசே தோ ஆஜ் ஹம் ஆரிய சமாஜ் ஸ்தாபனா திவஸ் செலிப்ரேட் கர்த்தே, பர் உசிகி சாத்தி எக் பஹுத் ஹி கூப்சூரத் பர்வ ஹை. சாரே பாரதீய அப்னே அப்னே டங் சே செலிப்ரேட் கர்த்தே, பர் மோஸ்ட் ஆஃப் லோகோ கோ பதா ஹி நஹி கி வோ செலிப்ரேட் க்யூ கர்தே. ஆர் வோ ஹை ஹமாரா அப்னா நயா சால், மத்லப் நியூ இயர். ஆர் வோ யே தோ முஜே நஹி பதா ஜோ 2022 கிரெகோரியன் கேலண்டர் ஹை உஸ்கி ஷுருஆத் கஹான் சே ஹுயி, மத்லப் க்யா செலிப்ரேஷன் ஹை. பர் ஜோ பாரதீய நவவர்ஷ், பாரதீய கஹனா ஜாதா டீக் நஹி ஹோகா, க்யோங்கி துனியா கே மோர் தேன் ஹாஃப் ஆஃப் த வர்ல்ட் மே இன்ஹி தினோ நயா சால் செலிப்ரேட் ஹோதா ஹை, அலக் அலக் நாமோ சே ஜிஸ்கி சர்ச்சா ஹம் கரேங்கே. வோ சென்ட்ரல் ஏசியா ஹோ, மிடில் ஈஸ்ட் ஏசியா ஹோ, சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா ஹோ, ஈஸ்டர்ன் யூரோப் ஹோ, ஹேனா பஹுத் சாரே தேஷோ மே இசி தின் செலிப்ரேட் ஹோதா ஹை. தோ இண்டியன் கஹனா தோ டீக் நஹி, ஹா ஹிந்து நயா சால் ஆப் ஜாதா அப்ரோப்ரியேட் ஹோகா, கிசி பி தேஷ் மே ஹோ தோ செலிப்ரேட் கர் சக்தே. தோ சார் பாஞ்ச் சீஜே இன்கே சாத் ஜுடே ஹுவே ஹே. ஏக் தோ அர் யே ஏக் அப்ரில் சே ஷுரூ ஹுவா, இஸ் பார் விக்ரமி சம்பத் 2079 ஷுரூ ஹுவா, அர் வோ ஹே சைத்ர சுக்ல பிரதிபத் ஜோ திதி ஹை. யுகாப்த த பிகினிங் ஆஃப் த கலியுக் 5123 சால் ஹுவா. சக சம்பத் ஜோ மோஸ்ட்லி சவுத் மே விக்ரம் கே பராபர், விக்ரமாதித்ய கே பராபர் ஜோ சாலிவாஹன் சாக்த சக தே ஜோ கி 1944 ஷுரூ ஹுவா. அசிருஷ்டி சம்பத் ஆஜ் சே ஜோ ஹியூமன் ரேஸ் தர்த்தி பர் ஜோ பேதா ஹுயி வோ, அப் இஸ்கோ கவுண்ட் கரேங்கே முஜே, ஏக் தஸ் சோ ஹஜார் லக்ஷ நியூத் கரோட், 197,29,49,123 வர்ஷ ஹுவா. முஜே தோ கின்னா படா, பர் யே ரோஜ் அப்டேட் ஹோதா ஹை. ஓகே, ஆர் யே டேட் ஹை இஸ் சால் கே அப்ரில் 1 தாரீக் 2022 கே ஹிசாப் சே பதா ரஹா ஹூன். தோ க்யா ஹை யே செலிப்ரேஷன், சைத்ர சுக்ல பிரதிபத், சைத்ர மாஸ் வசந்த ரித்து மே படதா ஹை, ஸ்பிரிங் சீசன் மே. ஆர் சைத்ர மாஸ் கே சுக்ல பக்ஷ கா பஹலா தின், மீன்ஸ் அமாவாஸ்யா கே அகலே தின். இஸ்கோ சமஜனே சே பஹலே குச்ச லோகோ கே கிளாரிஃபிகேஷன் கே லியே ஏக் தோ சீஜே தியான் ரக்கே. ஹமாரே யஹா ஜோ மந்த் கி ஷுருஆத் ஹோதி ஹை, யே தோ தரஹ கே கேலண்டரோ கே காரண் அலக் அலக் தினோ மே ஹோதா ஹை. ஏக் பாரத் மே லூனர் கேலண்டர் பி சல்தா ஹை ஜிஸ்கோ சந்திர வர்ஷ் கேதே ஹை, ஆர் சோலர் கேலண்டர் பி சல்தா ஹை ஜிஸ்கோ சௌர வர்ஷ் கேதே ஹை. சோலர் கேலண்டர் சே ஜித்தனி பி சங்கராந்தியா ஹை, 12 சங்கராந்தி, ஏக் சங்கராந்தி சே தூசரி சங்கராந்தி, ஏக் மாஸ் ஹோ ஜாதா ஹை. ஜோ லூனர் கேலண்டர் ஹை சந்திர வர்ஷ் ஜோ சந்திர கி மூமெண்ட் கே பேஸ் பர் ஹோதா ஹை, வோ பி ஏக் மஹீனா ஹோதா ஹை, பர் உஸ்கோ கஹான் சே ஷுரூ கர்னே கே பேஸ் பர் தோ தரஹ கே விசார் ஹை. ஏக் கோ கேதே ஹை அமாந்த, அமா கேதே ஹை அமாவாஸ்யா, அமாவாஸ்யா ஜானதே ஹை நா ஜோ டார்க் டார்கெஸ்ட் ஜோ ராத் ஹோதா ஹை ஜிஸ் தின் சாந்த் நஹி ஹோதா ஹை. மோஸ்ட்லி சவுத் மே ஆர் பஹுத் சாரே தூசரே ஜகஹ பர் அமாவாஸ்யா கோ ஜோ மூன்லெஸ் நைட் கோ எண்ட் ஆஃப் த மந்த் மானா ஜாதா ஹை, அகலே தின் கோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் மந்த் மானா ஜாதா ஹை. ஜோ லோக் பூர்ணிமா கோ எண்ட் ஆஃப் த மந்த் மானதே, மோஸ்ட் ஆஃப் நார்தர்ன் இண்டியா, ஈஸ்டர்ன் இண்டியா, வெஸ்டர்ன் இண்டியா, தோ வோ பூர்ணிமா கோ எண்ட் ஆஃப் த மந்த் மானதே, அகலே தின் கோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் மந்த் மானதே. சோ இசிலியே 15 தின் கா ஃபர்க் ரஹதா ஹை. ஜோ அமாவாஸ்யா கோ எண்ட் ஆஃப் த மந்த் மானதே, உன்கே லியே 15 தின் ஆகே பிச்சே ரஹதா ஹை. ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मतलब अमावस्या के अगले दिन जो फर्स्ट डे ऑफ द शुक्ल पक्ष होता है उसी को नया साल के रूप में मोस्ट ऑफ इस धरती के मोस्ट ऑफ देशों में कल्चरों में ट्रेडिशनली सेलिब्रेट किया जाता है। जब यूरोपियन कॉलोनीज बनने लगे तो जो यूरोप में जो डेवलप हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर वो धीरे धीरे सब जगह स्टैंडर्डाइज होने लगा। इवन यूरोप के मोस्ट ऑफ देशों में खास करके ईस्टर्न यूरोप के देशों में आज भी ट्रेडिशनली न्यू ईयर उनकी जो लोकल न्यू ईयर के रूप में तो इन्हीं दिनों ही शुरू करते हैं मार्च और अप्रैल के हाफ में। और अगर प्राचीन रोमन और ग्रीक कल्चर देखें उनका भी न्यू ईयर चैत्र मास मतलब मार्च और अप्रैल में या स्प्रिंग में शुरू होता था। और जो लोग थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की हिस्ट्री आप गूगल करके भी देख सकते हैं। शुरुआत में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर फिक्स हुआ वो भी 10 महीने का ही था, 10 महीने का, और वो मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होता था, दिसंबर में एंड होता था। जिनको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की थोड़ी जानकारी है तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज में संस्कृत का उसी तरह का इन्फ्लुएंस दिखता है जैसे इंडियन लैंग्वेज में। स्पेशली जो रोमन और ग्रीक लैंग्वेजेस हैं या उनसे या इंग्लिश फ्रेंच जर्मनी आदि लैंग्वेज की जो पुरानी लैंग्वेज है उसमें तो ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जो मंथ्स के नाम पड़े ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह शुरू में वो सब संस्कृत के ही शब्द थे, बाद में कुछ रोमन जो एम्पायर है उनके नाम पर या ग्रीक माइथोलॉजी के कुछ देवी देवताएं उनको नाम को बाद में जोड़ा गया। जनवरी फरवरी दो मंथ तब भी नहीं था, 10 महीना था। और आज भी जिन तीन महीनों का नाम नहीं जोड़ा गया आज भी वो संस्कृत के ही नाम है और वो है अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अक्ट मतलब संस्कृत में अष्ट, नव मतलब नवई है, नवंबर मतलब नव मतलब नाइन्थी है, दिसंबर 10 से बना दिसंबर। आज भी ये तीनों महीनों का नाम संस्कृत के उसी बिगड़े हुए रूप के रूप में है, किसी एम्परर या किसी ग्रीक गॉड या गॉडेस के नाम पर नहीं आया है। तो उनकी भी साल की शुरुआत इन्हीं मार्च और अप्रैल में होता था। जब क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करने लगा यूरोपियन कल्चर में तो धीरे धीरे जो आर्क बिशप हैं बिशप हैं पोप हैं वो चीजों को चेंज करने लगे और यूरोपियन डोमिनेशन के कारण वो जीसस की जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। कहां 25 दिसंबर और 1 जनवरी इसमें 6 दिन का फर्क तब भी होता है, इट्स नॉट द एक्चुअल डेट। खैर वो एक कंफ्यूजन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ दुनिया के बड़े हिस्सों में जहां भी प्रॉपर सिविलाइजेशन था या है आज भी मार्च और अप्रैल से ही नया ईयर सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग नाम से करते हैं। तो हम थोड़ा बहुत तो शुरू में उस समय देखेंगे कैसे भारत में अलग अलग राज्यों में किस नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, अब भारत के बाहर किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है, फिर हम आएंगे आर्य समाज स्थापना दिवस, क्योंकि स्थापना दिवस भी इसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो पहले जो ईयर है वो है विक्रमी संवत। आज भी जो इंडियन गवर्नमेंट के जो तीन कैलेंडर जो उनके कैलेंडर में जो तीन ईयर्स होते हैं, एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इंडियन गवर्नमेंट का छपता है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें 2022, फिर उसमें होगा विक्रमी संवत जैसे चेंज हो गया 2079, और दूसरा जो कैलेंडर होता है वो होता है शक संवत 1944। महाराज विक्रमादित्य उज्जैन उनकी कैपिटल था जो आजकल मध्य प्रदेश में है, और ये उनके राज्य में मोस्टली अफगानिस्तान से लेकर के आंध्रा के आसपास तक पूरा एरिया में राज करते थे। और उनकी प्रसिद्धि उनके समय में जितने इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो, नॉलेज हो, फिलोसफी को जिस तरह प्रमोशन मिला, जिस तरह उन्होंने राज्य स्थापित की, उसके कारण उनको गोल्डन एज का माना जाता है। तो उन्होंने जब शकों को हराया, शकों को हराने के बाद अपने नाम से जो ईयर चलाया वो विक्रमी संवत के रूप में जाना जाता है, जो 56 BCE में शुरू किया। तो आज से मतलब अप्रैल 1 तारीख से वो 2079 ईयर हुआ। इसी तरह दक्षिण में मोस्टली जिसको आजकल हम आंध्र तेलंगाना कर्नाटक का एरिया मानते हैं, उसमें राजा शालिवाहन जो शक वंश के है, तो उन्होंने हुणों को पराजित करके जो अपना न्यू ईयर एस्टैब्लिश किया वो जनरली 78 AD कंपैरेटिवली नया है, और उन्होंने शक संबत चलाया, आज भी वो बहुत पॉपुलर है। बाकी जो सृष्टि संबत वगैरह हम बाद में समझेंगे, पहले देख लेते हैं भारत में किस किस नाम से ये न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। महाराष्ट्र और उसके आसपास मराठी लोगों में ये गुड़ी पड़वा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कोंकणी जो गोवा, थोड़ा कर्नाटक का हिस्सा, थोड़ा महाराष्ट्र के हिस्सा, जो कोंकणी कल्चर वाले हैं वो संवत्सर पाड़ुओं के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। यही दिन है चैत्र प्रतिपद, नाम अलग अलग है उनका, कोई कहता है ये सिंधी नया ईयर है, कोई कहता है मराठी, हर व्यक्ति अपने साथ जोड़ के न्यू ईयर कहता है, पर एक्चुअली ये ना बंगाली है, ना तेलुगु है, ना तमिल न्यू ईयर है, ना इंडियन न्यू ईयर है, ना पंजाबी न्यू ईयर है, ये हिंदू न्यू ईयर है। ये दुनिया के सैकड़ों देशों में सेलिब्रेट होता है अलग अलग नाम से, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम अपनी रीजनल आइडेंटिटी के साथ उसको अन्य प्रमोट करते हैं। इसी तरह राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में थापना कहा जाता है, सिंधी लोग चेटीचंड के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, कश्मीर में नवरेह या नवरोज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये पर्शियन नाम है और पर्शी और संस्कृत एक ही ब्रांच के हैं, एक ही के हैं। इसमें नवरोज में भी नौ जो है संस्कृत में न्यू, रोज जो होता है वो पर्शियन शब्द है। मणिपुर में मैतेई कैलेंडर में इसको चेहराओबा कहते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्र में इसको युगादि या उगाड़ी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, युगादि मतलब आदि मीन्स बिगिनिंग, युग मीन्स युग, है ना। तो आज के दिन युग का आरंभ हुआ और इसी नाम से ही आंध्र, कन्नड़ और तेलंगाना एरिया में उसी नाम से ही सेलिब्रेट करते हैं युगादि। थोड़ा अपभ्रंश करके उगाड़ी के रूप में भी बोलते हैं, तो वो युग के आरंभ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। कुछ पिक्चर मैंने जो डाला, जो उनके फेस्टिवल होते हैं, जो जिस तरह के डांस, खान पान जो भी उसमें होते हैं, आपको थोड़ा वो देखने को मिलेगा। तो ये था जो लूनर कैलेंडर के हिसाब से, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के हिसाब से जो वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो चैत्र प्रतिपदा को नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत में और बहुत सारे जगह जो संक्रांति के हिसाब से न्यू ईयर सेलिब्रेट, मतलब जो सोलर कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, वो संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। और संक्रांति का पूर्णिमा अमावस्या से कोई लेन देन नहीं है। अभी हमने मकर संक्रांति जनवरी को सेलिब्रेट किया, वैशाख संक्रांति अप्रैल 14 को पड़ेगा, है ना। तो जो लोग सोलर कैलेंडर से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग नाम से, उनकी भी लिस्ट देख दिए। टाइम वही है, मार्च और अप्रैल स्प्रिंग को जो न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और वो कौन से एरिया है, तमिलनाडु में ये चैत्र प्रतिपदा नहीं, ये वैशाख संक्रांति जो 14 अप्रैल को, मतलब 14 अप्रैल को पड़ता है संक्रांति, सोलर कैलेंडर के कारण। तमिलनाडु में इसको पुठंडू या वरुड़ा पिरप्पू के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। केरल के मलयालम लोग इसको विशु के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये विशु, ये जो वैशाख संक्रांति है उस दिन विशु संक्रांति, मतलब सन जो है इक्वेडर को क्रॉस करता है। इक्वेडर को संस्कृत में विशु विशु रेखा कहते हैं, बिकॉज अब वो ट्रांजिशन है इक्वेडर लाइन को, दैट्स हाउ इट्स नोन एज विशु रेखा, विशु संक्रांति या वैशाख संक्रांति। तो सेलिब्रेटेड सेलिब्रेशन को भी केरला में विशु, असम में बिहू और बहुत सारे जगह विशु, वो हम चलेंगे। इसी तरह पंजाब और हरियाणा में बैसाखी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बिहार के मिथिला मिथिलांचल जो नेपाल के बॉर्डर है, मधुबनी दरभंगा आदि क्षेत्र, और नेपाल में इसको जुड़े शीतल पौइल वैशाख, वैशाख तो समझ गए, पौइल मतलब पहला फर्स्ट। इसी तरह बंगाल में पहला वैशाख के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अगेन पहला मतलब फर्स्ट वैशाख, मतलब फर्स्ट डे ऑफ वैशाख संक्रांति के हिसाब से। ये पंजाबी डांस का पिक्चर है तो बंगाली बिहारी लोग नाराज नहीं होना, एक पिक्चर डाल सकते हैं। इसी तरह असम में इसको रंगोली बिहू, बिहू विशु से बंगाल असम में स को हा उच्चारण किया जाता है, जैसे असम को अहोम, हा तो नहीं थोड़ा हाफ हा, तो विशु को बिहू ऐसे बोला जाता है। तो रंगोली बिहू या बोहाग बिहू के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उड़ीसा में विशु संक्रांति के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हुआ भारत के अलग अलग स्टेट्स में जिस रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अब हम देखेंगे भारत के बाहर भी इन्हीं दिनों को, यही या तो सोलर कैलेंडर में करते हैं तो वैशाख संक्रांति या पहला वैशाख, या लूनर कैलेंडर से कहते हैं तो चैत्र प्रतिपदा के रूप में किन किन देशों में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है, और उनका नाम भी काफी ध्यान देने की बात है। बालीनीज न्यू ईयर जो इंडोनेशिया का, बाली जो आज बचा खुचा हिंदू है, पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, पूरा साउथ एशिया एक बार कभी पूरा हिंदू देश थे, आज सब नष्ट होकर के इंडिया से बाहर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर अगर कोई ओरिजिनल हिंदू हैं वो इंडोनेशिया के बाली बाली हिंदू होते हैं। तो वो सेलिब्रेट करते हैं नियपी, उनका नाम है नियपी। इसी इंडोनेशिया में जो जावा एरिया है तो उसको सातु सुरो के नाम में सेलिब्रेट करते हैं। थाईलैंड में संक्रांत, ध्यान रखिए संक्रांत ये उसी संक्रांति संस्कृत का ही थाई भाषा में है। लाओस में भी संक्रांत बोलते हैं या पाई माई लाओ बोलते हैं। कंबोडिया के जो खमेर कल्चर है जिसमें चौल चनाम थेम थमें ही बोलते हैं। इसी तरह अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें, ईरान जो कि पर्शियन कल्चर का सेंटर था, और पर्शियन जो ज़ोरास्ट्रियन धर्म है जो वैदिक धर्म से काफी 70-80% सिमिलर है, उनके जो मूल ग्रंथ है जेंदे अवेस्ता और वेद, अगर आज भी कभी आपको मौका मिले कोई पारसी वेडिंग देखें यूट्यूब में या कहीं, और अगर उनका प्रिस्ट प्रोफेशनल प्रिस्ट हो, आजकल तो कोई भी बन जाता है पैसा कमाने के लिए प्रिस्ट बन जाते हैं, पर अगर कोई पढ़ा लिखा, मतलब उनके लिटरेचर पढ़ा लिखा जो भी पारसी को पढ़ा हुआ हो, प्रोफेशनल हो, अगर आप उनको सुनेंगे आप गलती से लगेगा कि कहीं संस्कृत सुन रहे हैं। ध्यान दीजिए इतनी सिमिलैरिटीज है। तो ज़ोरास्ट्रियन लोग भारत में भी काफी पुराने पर्शियन लोग हैं, पर्शी लोग हैं और बहुत फेमस हैं, बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं। वो नवरोज बोलते हैं, नौ ध्यान रखिए, नव न्यू, रोज मतलब डे, न्यू डे ऑफ द ईयर है ना, सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, काकोसस, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं सारा ब्लैक सी बेसिन में और बाल्कन्स में जो ईस्टर्न यूरोप जो आजकल ज्यादा न्यूज में आप लोग देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के कारण, वो पोलैंड और जो भी वो जो आसपास के जितने ना बेलारूस उसके आसपास जितने एरिया हैं, तो वो सब एरिया कभी हिंदू धर्म का या हिंदू कल्चर से भरा हुआ था, तो आज भी वहां 3000 साल से न्यू ईयर सेलिब्रेट होते हैं, और वो जो सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ी चीज जो यूज करते हैं, व्हीट ग्रास जो होता है वो ट्रेडिशनली नवरोज में यूज होता है। इवन भारत में भी बहुत सारे स्टेट में ये व्हीट ग्रास, जो नया व्हीट ग्रास है, गेहूं के जो पौधे हैं या धान के पौधों को इस फेस्टिवल में यूज होता है। इवन भारत से बाहर भी, वो मिडिल ईस्ट हो या सेंट्रल एशिया, उसमें भी इसकी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह जो अल्बानिया है वहां नवरोजित कहते हैं, अजरबैजानी लोग नवरोज, पोलिश पोलैंड जो है उसको नोईरोग, ध्यान रखिए संस्कृत में नव मतलब न्यू, वो नव का ध्यान रखिए, न्यू भी संस्कृत से ही बना है। वह स्लोवाकिया में नोवीरोग, कुर्दिश लोग नवरोज जो बहुत टर्चर्ड हो रहे हैं आजकल इराक सीरिया एरिया में, है ना, किर्गिज में नूरूज, पस्तो जो अफगानिस्तान तजाकिस्तान के आसपास के जो कम्युनिटी है, नवरोज, ताजिक नवरोज, तुर्किश नवरोज, उज्बेक नवरोज, ये सब पर्शियन इन्फ्लुएंस है, उनके खान पान डांस को देखिएगा। इसी तरह सेंट्रल एशिया में जो कजाक उज्बेक या वीगुर कम्युनिटी है वो भी नवरीज के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेम उनके लोकल डांस लोकल संग है, पर मोस्ट ऑफ जो ट्रेडिशन है पूजा करने की वो सेम ही है। चलिए ये तो हमने जाना कि कहां कहां किस किस रूप में चैत्र प्रतिपदा, मतलब मोटी भाषा में कहें स्प्रिंग वसंत में नया साल सेलिब्रेट होता है। अब हम जानेंगे क्यों होता है। ठीक है, विक्रमादित्य और शक ये तो एक राजा है जिन्होंने अपने नाम पर चलाया, उन्होंने भी क्यों चलाया उसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री है, वो थोड़े बहुत देखेंगे। पहली चीज है कि हमारे वैदिक एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से संसार की सृष्टि आज के दिन हुई थी, उसकी जो काउंटिंग है, जब आप किसी भी तरह के हिंदू के घर में जब कोई पूजा पाठ हवन कुछ भी होता है, जरूरी नहीं कि आर्य समाज, कोई भी हिंदू जो पंडित जी जो संकल्प करते हैं, वो संकल्प में रोज वो अपडेट होता है, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कल, ये जो मैं सुना रहा हूं संस्कृत में, ये सब टाइम यूनिट है, इस यूनिवर्स को बने हुए कितने साल हुआ वो हम सेलिब्रेट करते हैं सृष्टि संवत के रूप में, मीन्स द सेलिब्रेशन ऑफ द न्यू द क्रिएशन। और मानव सृष्टि को, ह्यूमन बीइंग को बने हुए इतने साल हुए, मैं दोबारा काउंट करूं मुझे याद नहीं रहता है, 1,100,000 आयुत लक्ष्य न्यूत कोटि 1,196 करोड़, इंडियन टाइप में मैं बोल रहा हूं, 196 करोड़ 85 लाख 31,123, ये है इंसान को इस धरती पर आए हुए। कैसे आए हुए आज का वो टॉपिक नहीं, वो बाद में पूछ लीजिए या क्लास वगैरह में आइए, अब डिटेल पता चलेगा। तो ये था सृष्टि संबंध। इसी दिन ही राम को राज्याभिषेक का दिन भी यही चुना गया था, राम को राजा बनने के लिए जो कोरोनेशन था भी, वो भी इसी दिन चुना गया था, चैत्र शुक्ल प्रतिपद को इसी दिन राजा राम राज्याभिषेक हुआ। इसी दिन युधिष्ठिर भी महाभारत की लड़ाई के बाद जब पांडव जीते, वो तो 99% तो मरी गए थे, जो भी थोड़ा बहुत बचे, युधिष्ठिर भी उसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, आज से 22 साल पहले उन्होंने राजा बना। और युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक होने से कलियुग का ट्रांजिशन पीरियड शुरू होता है। तो कितने साल हुआ आज को कलियुग को शुरू हुए, 5,123 साल हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये कलियुग नष्ट होने वाला है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, 4,32,000 है ना, 400,000 क्या कैसे हिसाब करेंगे जो भी हो, वो 4,32,000 देख लीजिए, तो उसमें से सिर्फ 5,123 साल बिताए, अभी तो 4 लाख करीब करीब 27,000 साल बचाए, बहुत कुछ लड़ाई देख होगी, बहुत कुछ और भी कुछ होगा। तो अभी तो शुरुआत है। तो कलियुग को शुरू हुए 5,123 साल हुआ आज के दिन। इसी तरह थोड़ी बहुत हमने ये जाना, ये न्यू ईयर क्या है, इंडियन न्यू ईयर कैसे क्यों बनता है और कहां कहां सेलिब्रेट होता है, थोड़ी सी हल्की सी आपको जानकारी दी। और मैं आशा करता हूं कि आप इसको सेलिब्रेट करें, आप इतने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इसको भी करें। जब हम नहीं करेंगे ना तो कोई नहीं करेगा। आज पता है ये अमेरिका में अमेरिकन लोग कितने चाइनीज लोगों को हेट करते हैं, पर ऐसा अमेरिका में कोई नहीं मिलेगा, छोटा सा शहर में रहने वाला भी अमेरिकन, जिसको ये ना पता हो कि चाइनीज न्यू ईयर होता है। क्यों? क्योंकि चाइनीज प्राउडली अपनी चीजों को रखता है। जब तुम अपनी चीजों को प्राउडली बोलोगे, मानोगे, करोगे तो दूसरा भी मानेगा, करेगा। अब इंडियन लोग इतने कॉम्प्लेक्स में भरे होते हैं, खास करके पढ़े लिखे लोग, अपने आप को छुपाने में इतने बिजी रहते हैं, हमें अमेरिकन जैसा दिखना बनने की इतनी ललक बनी हुई है, हम हर चीज को छुपाते हैं और वो समझ जाते, इसीलिए हमें कोई पूछता नहीं है। आपने दिवाली को बहुत एग्रेसिवली फॉलो किया, एक्सेप्ट किया, ओन किया, तो आज प्रेसिडेंट हाउस में, व्हाइट हाउस में भी दिवाली सेलिब्रेट होता है। तो जब तक मैं अपने बच्चों को अपना ना मानू ना, तो दुनिया उसको मेरे बच्चे के रूप में नहीं मानेगा, वो अनाथ ही घूमता फिरेगा। तो जब तक मैं अपने फेस्टिवल को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी चीजों को ओन ना करूं और उसको सेलिब्रेट ना करूं, कोई दूसरा नहीं करने वाला। तो ये जरूरी है कि हम अपनी चीजों को जाने। अगर नहीं पता था तो एक्सक्यूजेस खत्म हो गया, अब तो नहीं बोलेंगे कि पता नहीं था। अब जितने लोगों को पता है सेलिब्रेट करो, जैसे दिवाली करते हो, होली करते हो, ऐसे लोगों को बुलाओ, पार्टी रखो, खाओ पियो, खाओगे पियोगे मस्ती तो करोगे, कौन सा कह रहे हैं कि बैठ के मेडिटेशन करो, मस्ती की तो बात कर रहे हैं, ये तो कर सकते हो, पर नाम दोगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन, है ना, हिंदू न्यू ईयर सेलिब्रेशन, बस यहीं से तो शुरू करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, पता चलेगा अच्छा ये भी होता है। अरे अमेरिकन को तो पता चल गया होगा, इंडियन लोगों को ही सरप्राइज हो, अच्छा ये भी होता है, मुझे तो पता नहीं था, अब प्राउडली दे विल टेल यू। ओके, ज्यादा अपनी बुराई करना भी अच्छी बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, आज हम जो आर्य समाज स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, आर्य समाज ओवरऑल और आर्य समाज ग्रेटर ईस्टर्न, जिसके आप सब हम सब पार्ट हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जितना बाकी समय है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आर्य समाज ओवरऑल, महर्षि दयानंद जी चैत्र शुक्ला पंचमी, न्यू ईयर के दिन नहीं, न्यू ईयर तो होता है चैत्र शुक्ला फर्स्ट डे में, फिफ्थ डे में स्वामी जी ने बॉम्बे में पहला आर्य समाज स्थापित किया। अंग्रेजी डेट में देखें 1875 अप्रैल 10th को, और भारतीय न्यू ईयर के रूप में देखें, वर्ष के रूप में देखें 1932 विक्रमी संवत शुक्ल पंचमी, पंचमी मतलब फिफ्थ ऑफ शुक्ल पक्ष। आज अगर 1 तारीख को प्रथम था, आज 4 है, मतलब कल पंचमी होगी, तो आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी अपने जीवन में बचपन से लेकर सच्चे ईश्वर को ढूंढने, अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय ढूंढने में लगाया, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक हजारों लाखों साधु सन्यासी गुरु तपस्वियों के साथ बैठा, पढ़ा, लिखा, सीखा, अपने धर्म ईश्वर को पाने का तरीका समझने की कोशिश की। इसी माध्यम से उन्होंने हमारे देश की लोगों की गरीबी, पॉवर्टी, जो सफरिंग, जो पेन, इसको भी देखा और उसका कारण भी जाना, कॉज भी जाना। तब उन्होंने जो मूवमेंट चलाया कि इस देश में जब तक एजुकेशन ना आएगा, जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे जब तक इनको रिलीजियसली एजुकेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जो रोल है रिलीजियस सुपरस्टिशियन का, लोगों की इलिटरेसी, लोगों की गरीबी, लोगों की सफरिंग का, उसमें रिलीजन का हमेशा किसी आज भी किसी भी रिलीजन में बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे बड़ा, आप माने नहीं माने, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको कौन प्रमोट करता है? सारे रिलीजन, कोई एक नाम बता दीजिए कौन सा रिलीजन है जिसमें महिलाओं को बराबर, तो छोड़िए थोड़ा 19 का भी अधिकार आज भी नहीं है। कोई भी रिलीजन हो, एक तो रिलीजन है जिसमें तो वो महिलाओं के में आत्मा ही नहीं मानते हैं, वो तो पत्थर और ईंट की तरह मानते हैं, है ना, तो वो अलग बात है। और ऐसा नहीं कि मॉडर्न हिंदुइज्म में भी यही रहा, महिलाओं को कोई कोई राइट नहीं रहा पढ़ने, कहां आज से 100-200 साल पहले अगर आप अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह देखेंगे, कहां पढ़ने लिखने वाले, कहां महिलाओं को मिलता था? ये इसका कारण क्या था? रिलीजियस बिलीफ। आज भी अगर नहीं है तो रिलीजियस बिलीफ। पति परमेश्वर है, परमेश्वर समझते हैं, पति लोग बड़े खुश होते हैं, ये रहना चाहिए, थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो रहे ना, है ना, हस्बैंड इज द गॉड। वो हमारे इवन जो महिलाएं होती है ना, उनकी माएं आकर के अपनी बेटियों को डांटते हैं, तो दामाद से काम कराता है, शर्म नहीं आता है, पाप कराते हो, है ना। तो ये उनकी मां को ये ज्ञान कहां से हुआ, उसकी मां को ज्ञान से कहां से हुआ? पंडित जी से, धर्म से आता है ये सब, रिलीजन से आता है। तो स्वामी जी ने देखा, जब तक रिलीजियस अवेयरनेस ना आए, रिलीजियस एजुकेशन ना आए, तो सोसाइटी में बहुत सारे जो जो सफरिंग है, जो पेनफुल जर्नी है, वो कास्ट के नाम पर हो, जेंडर के नाम पर हो, किसी के भी नाम पर हो, वो कभी दूर नहीं होने वाला। तो उन्होंने ये अपनी सारे विचारों को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, उसका नाम उन्होंने आर्य समाज रखा। हमारी नाकामी और नालायकी के कारण आर्य समाज एक सेक्ट के रूप में बनता जा रहा है, पर यह एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कोई हमें आर्य समाजी बुलाए, हम कोई सेक्ट नहीं है। कोई रिपब्लिकन पार्टी में काम करे वो कोई सेक्ट नहीं होता। आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम था स्वामी जी के द्वारा बताए गए विचारों को, या हमारे शास्त्रों में वेद उपनिषद जो भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों की बातों को जनता तक पहुंचाना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों के सुपरस्टिशियन को खिलाफ अवेयरनेस पैदा करना, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ मूवमेंट चलाना, वो तो हम कर नहीं रहे हैं, अपने आप को सेक्ट बना के बैठ गए। हम सोचते हैं हवन करने से मुक्ति मिल जाएगी, ये भी एक सुपरस्टिशियन है आर्य समाजियों ने शुरू किया, ये नहीं होना चाहिए। और सच कहिए, कोई पक्का आर्य समाजी नहीं बन सकता जो लेजी हो, क्योंकि ये काम करने के लिए बना था, पब्लिक में जाने के लिए बना था, अवेयरनेस पैदा करने के लिए बना था। तो आर्य समाज की बेसिक जो दो चार चीजें हैं वो आपको बताते हैं। गोल क्या था स्वामी जी का? जो मेन गोल था, कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को नोबल बनाओ, अच्छा बनाया जाए, ये वेद का एक मंत्र है। उसके लिए उन्होंने 10 बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए, वो दोनों तरफ आपको मिल जाएगा हर जगह, आर्य समाज के 10 प्रिंसिपल है। तो बेसिक उद्देश्य क्या था? टू प्रोमोट ए सोसाइटी ऑफ इक्वालिटी, टू इराडिकेट सुपरस्टिशियस अनजस्ट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ कल्चर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स रूलिंग। किसी के भी नाम पर जो भी इनइक्वालिटी, करप्ट प्रैक्टिस, सुपरस्टिशियन, इन सबके खिलाफ मूवमेंट चलाना और रीस्टैब्लिश जो हिंदुओं में जो कॉन्फिडेंस काफी हद तक नष्ट हो चुका था और आज भी कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पैसे वाले होने के बाद भी कल्चरली रिलीजियसली हम अभी भी कहीं ना कहीं अपनी चीजों के साथ हम प्राउडली आइडेंटिफाई करने में शर्माते हैं। उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई। स्वामी जी ने तीन चार चीजें दी, कैसे जानो क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है अगर रिलीजियन या स्पिरिचुअलिटी की बात है। और ये उनके अपने विचार नहीं है, स्वामी जी कहते, वैसे भी स्वामी जी की कहना है, मेरा कोई अपना विचार नहीं है, जो शास्त्रों में पढ़ा मैं आपके सामने रखता हूं। पहली चीज है जो तुम्हारे पर जो लॉ ऑफ नेचर है, जो भी तुम करते हो सुनते हो या तुम्हें कोई बताता है, तुम सिंपल चार चीजों से उसको टेस्ट करो। इज इट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर इट्स आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। कोई कहे मैं हाथ फूंक करके सोने की अंगूठी निकालता हूं नेकलेस निकालता हूं और ये बोल बोल के वो भगवान बन गया, करोड़ों लोग भक्त बन गए, क्या लॉ ऑफ नेचर में ऐसा संभव है कोई फूंके और गोल्डन रिंग बन जाए? अगर ये नहीं है तो तुम्हें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, ये फ्रॉड है, वो बाबा नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, वो कोई पक्का अब्बल दर्जे का फ्रॉड है जिसको तुम गुरु या भगवान मानते हो। सिंपल लॉजिक, लॉ ऑफ नेचर को मानो। दूसरा, जो तुम्हारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, क्या ऐसा कुछ तुम्हारे वैदिक शास्त्रों में लिखे हुए हैं? अगर वहां भी तुम्हारा पहुंच नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो लॉजिकली इज इट प्रूफ, क्या लॉजिकली ये प्रूफ किया जा सकता है कि ये सच है? गंगा नहाने से पाप छूटता है, क्या लॉजिकली रैशनली इसको प्रूफ किया जा सकता है? नहीं, तो डोंट एक्सेप्ट इट। और अगर तुम्हें किसी से कोई समझ में नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक माइंड है, तो शास्त्र कहता है अपनी कॉमन सेंस तो यूज कर लो, यूज योर ओन कॉमन सेंस। ये तो सबके पास है, ये तो अनपढ़ के पास भी है, पढ़ा लिखा पास भी है, रूरल में गांव में रहने वाले के पास भी है, शहर में रहने वाले के भी पास है। किसके पास नहीं है कॉमन सेंस? यूज योर कॉमन सेंस। अगर तुम्हारा कॉमन सेंस कहता है ये सही नहीं है तो डोंट एक्सेप्ट इट। ये बेसिक चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है, ये आर्य समाज का काम था प्रमोट करना। और थोड़ी सी हम लोकल यहां पर आते हैं, आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, अभी तो संजय जैन जी डिटेल में बताएंगे, 1991 को आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। गोल यही था वैदिक धर्म वैदिक दर्शन वैदिक विचार का प्रमोशन हो, खास करके जो हम जो भारत से बाहर परदेश में रहते हैं, हमारे लिए तो जो जरूरी है ही, पर हमारे जो अपने बच्चे हैं जो यूथ हैं जो एडल्ट्स हैं जिनको सही ज्ञान देने के लिए वो रिलीजियस हो स्पिरिचुअल हो, ग्रेटर ह्यूस्टन आर्य समाज की स्थापना हुई। और रामचंद महाजन जी जो देव महाजन जी के पिताजी हैं, जो शुरू में आए थे अपने बेटे के पास रहने के लिए, पर धीरे धीरे यहां घरों में जाकर के लोगों को जोड़ा, ढूंढ के निकाले कौन कौन आर्य समाज जी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की है। और धीरे धीरे काफी आप लोग जो आज यहां बहुत नहीं भी हैं, जो लोग यहां आते भी नहीं, ऐसे विजिबल इनविजिबल अनेक लोगों का फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है जिसके बेस पर आज इतनी खूबसूरत इंस्टीट्यूशन यहां एस्टैब्लिश्ड है और हम जितने काम करते हैं वो आपको पता है। ये कुछ पिक्चर मुझे पुराने कहीं से मिला, जहां पर आप बैठे हो वो कभी एक दिन जंगल जैसा था, उजड़ा हुआ एरिया, तो इस एरिया में, पूरे एरिया में, सिर्फ आर्य समाज नहीं, आज तो ये पूरा का पूरा एरिया इतना खूबसूरत डेवलप्ड हो गया है, ये लेक भी नहीं, ये लेक भी कितना खूबसूरत बन गया है ना। तो ये जब शुरुआत हुई थी, ये कुछ फोटो है मुझे कहीं से मिला, ये जो शुरुआती हवन हुई थी, इनमें से आप में से भी कुछ लोगों की यंग एज की चेहरे दिख जाते हैं 25-26-30 साल की पहले की बात है है ना। तो ये जो पुराना और ये 5-7 साल पहले का ये एक फोटो है। तो यहां तक हमारी जर्नी हुई है। तो आशा करते हैं ये आर्य समाज ह्यूस्टन, स्वामी दयानंद और वेद के विचारों को फैलाने में और आम लोगों की भलाई करने के लिए, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो पब्लिक का जहां जरूरत हो, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट हो, किसी भी तरह से हम आर्य समाज के माध्यम से काम आ सकें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ओन न्यू ईयर, नॉट माई ईयर, योर ओन न्यू ईयर, आपके आपके अपनी आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन की स्थापना, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। आगे का एक्टिविटी